वहीं आस्था ने अपने सिर पर हाथ मार लिया था कि उसे कैसा पति मिला है। उसकी बीवी ने अभी थोड़ी देर पहले एक बेटे को जन्म दिया है और उसका पति अगले ही पल उससे डिमांड कर रहा है कि उसे बेटी चाहिए। फिलहाल अरमान की इस तरह की बात सुनकर आस्था मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए देखकर अरमान के माथे पर बल पड़ गए और उसने बिना किसी के परवाह किए आस्था के करीब चला गया और किसी की परवाह किए बिना अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ते हुए बोला, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ माय डियर वाइफ, मुझे बेटी चाहिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी जैसी बेटी चाहिए थी, मुझे बेटा नहीं चाहिए था, वो भी मेरा जैसा, मेरा जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही थोड़े से सीरियस टोन में अरमान ने बातें कहीं, आस्था का चेहरा, जो अरमान की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था, अचानक ही फीका पड़ गया और वो हैरानी से अरमान को देखने लगी थी। वहीं बाकी सबने जैसे आस्था के मुरझाते हुए चेहरे को देखा तो रश्मि आस्था के पास आकर बोली थी, आस्था क्या हो गया तुम्हें, क्यों उदास लग रही हो? तुमने अभी अभी नई जिंदगी ली है, एक नई जिंदगी को तुमने जन्म दिया है। इस वक्त में स्ट्रेस बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम्हें प्रॉपरली रेस्ट करना होगा। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? अब रश्मि की बात सुनकर अरमान को अगले ही पल एहसास हो गया था कि आस्था को अभी एक नई जिंदगी मिली है और वो इस तरह से आस्था को परेशान नहीं कर सकता। तुरंत ही अरमान फिर आस्था को देखकर बोला था, वाइफी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे बेटी बाद में भी दे सकती हो, मैं अभी थोड़ी ना कह रहा हूँ। जैसे अरमान ने अब थोड़ा सा अटकते हुए ये कहा, आस्था केवल जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अरमान की बातें अब उसके दिमाग में पूरी तरह से घूमने लगी थी। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौर, जो आस्था के पल पल की खबर रखता था कि कब आस्था के साथ क्या होने वाला है और आस्था ने अपने आठवें महीने में क्या किया, सातवें महीने में क्या क्या की, क्या खाया, क्या पिया, हर चीज़ की जिसको खबर रहती थी, आज जब आस्था ने बेटे को जन्म दिया तो उसे भी इसकी खबर मिल चुकी थी। इस वक्त अबीर सिंह राठौर की आंखों के किनारे अपने आप ही भीग गए थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मोहब्बत के माँ बनने की खुशी में रो रहा है या फिर अरमान सिंघानिया के यहाँ उसका अंश पैदा हुआ है उसके लिए रो रहा है। फिलहाल अबीर ने कुछ कागज़ों को बड़ी ही ध्यान से देखते हुए कहा था, सोचा था जिस दिन आस्था मेरी मोहब्बत को कबूल कर लेगी उस दिन मैं उसे गिफ्ट के रूप में ये सब दूंगा, लेकिन अरमान सिंघानिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी आस्था को मुझसे दूर करने के लिए, और शायद अब मेरा और आस्था का भी कोई साथ नहीं है। वैसे भी मोहब्बत का दूसरा नाम है त्याग। अगर वाकई में आस्था से मोहब्बत करता हूँ तो आज मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सहनशीलता और त्याग की। फिलहाल अबीर ने गहरी सांस लेते हुए कुछ ज़रूरी कागज़ों पर हस्ताक्षर किए और अपने भरोसेमंद आदमी को अपने पास बुलाया और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद बोला था, अबीर सिंह राठौर शहर छोड़कर जा रहा है, पता नहीं आगे किसी मोड़ पर आस्था या अरमान से उसकी मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन फिलहाल अबीर का साथ यहीं तक था। मैं भी देखता हूँ कि ज़िंदगी मुझे किन राहों पर लेकर चलती है। क्या सुना है कि मोहब्बत में त्याग करने वालों को बड़ी बेहतरीन मंजिल मिलती है, मैं अपनी इस मंजिल की तलाश में जा रहा हूँ। ये बोलते हुए अबीर का चेहरा एकदम ही दाग हो गया था और जल्दी ही अबीर ने गहरी नज़रों से अपने आसपास देखा और अपना पावरफुल ऑरा के साथ जैसे ही वहाँ से बाहर जाने लगा, अचानक से अबीर का फ़ोन बजने लगा था। फ़ोन की दूसरी तरफ कुछ ऐसा कहा गया जिसे सुनकर अबीर के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। अपनी पॉकेट में फ़ोन रखने के बाद अबीर रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया और बोला था, मैंने तो सोचा था कि शायद ज़िंदगी में वापस से कभी भी अरमान सिंघानिया या फिर आस्था सिंघानिया से नहीं मिलेगा, लेकिन शायद अभी किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। किस्मत ने ऐसे ऐसे प्लान किए हैं जिससे हमारे रास्ते आगे चलकर एक बार फिर एक होने वाले हैं। फिलहाल तो अबीर सिंह राठौर ने अपनी महंगी वॉच पर एक नज़र डाली और जल्दी ही लंबे लंबे डिग भरता हुआ वहाँ से कहीं अनजान जगह की ओर रवाना हो चुका था और जल्दी ही उसका वो आदमी जिसे अबीर ने ज़रूरी कागजात दिए थे वो अस्पताल में पहुँच चुका था। और जैसे ही वो आस्था के वार्ड की तरफ जाने लगा, अरमान की सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया और आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान सभी के सभी मुड़कर उसे सिक्योरिटी आदमी को देखने लगे थे। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रंजीत था, कबीर का भरोसेमंद साथी। सुमित, ध्रुव, आहान सभी आकाश गहरी आंखों से रंजीत की ओर देखकर बोले थे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, किस लिए आए हो तुम यहाँ? आहान तो उसे देखकर कुछ ज्यादा ही आग बबूला हो रहा था। रंजीत पोलाइट वे में बोला, मैं सिर्फ मिसेज आस्था सिंघानिया से मिलने के लिए आया हूँ, अबीर राठौर का एक जरूरी मैसेज लेकर आया हूँ। अब ये सुनकर सबके माथे पर बल पड़ गए। वहीं आस्था और बाकी सबने भी ये बात सुन ली थी। तभी आस्था ने अचानक से अरमान की ओर देखा। अरमान के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। तब आस्था ने थोड़ी गहरी सांस ली और फिर रश्मि की ओर देखकर, रश्मि दीदी, बाहर जो कोई भी आया है आप उसे अंदर लेकर आ जाइए। अब ये सुनकर रश्मि ने तुरंत ही रंजीत को अंदर आने के लिए कह दिया था। तभी रंजीत आस्था के सामने आया।
उसका सिर अभी भी थोड़ा सा झुका हुआ था, लेकिन उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था और साथ में कुछ कागज भी थे। उसने सबसे पहले वहां का रास्ता को कंग्रेचुलेशन बोला और बोला कि अबीर सर की ओर से वो उनके लिए कुछ जरूरी चीज लेकर आया है। ये सुनकर आस्था थोड़ा चौंक भी गई थी, लेकिन फिर उसने रंजीत की ओर देखकर कहा था कि वो क्या लेकर आया है वो उसी के बारे में उसे बताए। तब रंजीत ने जल्दी ही वो कुछ जरूरी कागज और फूलों का गुलदस्ता आस्था की ओर बढ़ा दिया था। आस्था ने वे कागज और फूलों का गुलदस्ता देखकर चौंक गई। कार्ड पर लिखा था, नन्हे मेहमान के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार। आशीर्वाद के रूप में नीचे लिखा था, अबीर सिंह राठौर। अबीर सिंह राठौर ने अपना बंगला आस्था के बेटे के नाम कर दिया था। आस्था अबीर से ये उपहार लेना नहीं चाहती थी, लेकिन अबीर ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, नन्हे मेहमान के लिए एक प्यार भरा तोहफा आशीर्वाद के साथ। इसलिए आस्था मना नहीं कर सकी और उसने उसे स्वीकार कर लिया। वहीं रंजीत काफी खुश हो गया था कि आस्था ने अमीर का भेजा हुआ उपहार स्वीकार कर लिया था और वो खुशी खुशी वहां से वापस लौट गया। फिलहाल अरमान ये देखकर चौंक गया, लेकिन उसने आस्था को कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वे सब नन्हे मेहमान को लेकर घर के लिए रवाना हो गए। पूरे रास्ते अरमान का चेहरा उतरा हुआ था। आस्था ने ये नोटिस किया, लेकिन कुछ सोचकर चुप रही। वो अपनी गोद में लेटे हुए छोटे से गोल मटोल खूबसूरत और प्यारे बेटे को देख रही थी। आस्था फूली नहीं समा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। आस्था पूरे परिवार के साथ जल्द ही सिंघानिया मेंशन पहुंच गई। कार सिंघानिया मेंशन में प्रवेश करते ही नानी माँ बाहर उन सबका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आस्था के घर में दाखिल होने से पहले नानी माँ ने उसे बाहर रुकने के लिए कहा ताकि उसकी नजर उतार सके। आस्था ने सवाल भरी नजरों से उन्हें देखा। नानी माँ हल्के से मुस्कुराई और बोली, इससे तुम्हारे ऊपर लगी बुरी नजर तुम्हारा पीछा छोड़ देगी और तुम्हारे ऊपर आई मुसीबत भी जल्दी टल जाएगी। अरमान इन सब चीजों पर विश्वास नहीं रखता था, लेकिन नानी माँ के मन की तसल्ली के लिए उसने आस्था को वैसा ही करने दिया। उसका कोई विरोध नहीं किया। जैसे ही आस्था अंदर आई, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वहां बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजावट की गई थी और बड़े बड़े अक्षरों में साफ लिखा हुआ था, वेलकम माई प्रिंसेस।
ये देखकर आस्था की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, क्योंकि उसके बेटे के लिए कोई वेलकम नहीं लिखा था बल्कि बेटी के लिए लिखा हुआ था, जबकि उसे बेटा हुआ था बेटी नहीं। अरमान आस्था के साथ था, लेकिन वो कुछ उदास सा लग रहा था। आस्था बार बार अरमान की ओर देख रही थी। वहां की सारी सजावट देखकर अरमान का मन उदास हो रहा था, लेकिन रौनक, आहान, रश्मि, राधिका, एंजल, अविनाश, सुमित, आकाश, ध्रुव सभी ने मिलकर आस्था, अरमान और बच्चे का हंसी खुशी से बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया। लेकिन ये सारी चीजें लड़की को ध्यान में रखकर की गई थी, ये बात आस्था को खटक रही थी। और अरमान का उतरा हुआ चेहरा आस्था के मन को भी उदास कर रहा था, क्योंकि अभी तक अरमान ने अपने बेटे को नहीं लिया था, ना उसकी शक्ल देखी थी और ना ही उसे गोद में लिया था। जल्द ही आस्था और उसके बेटे को बेडरूम में शिफ्ट कर दिया गया। आस्था के शरीर में भी काफी कमजोरी थी, इसलिए उसे आराम करने के लिए कहा गया। इस बीच अरमान आस्था के साथ था। सभी घरवाले आस्था का बड़ा ध्यान रख रहे थे। नानी माँ आस्था को बहुत ही पौष्टिक आहार और अच्छा अच्छा खाना खिला रही थीं। लेकिन इस बीच अरमान ने एक बार भी अपने बेटे को नहीं लिया था, ना उसे देखने की या उसे लेने की इच्छा जताई थी। धीरे धीरे छह दिन बीत चुके थे। छह दिनों के बाद नन्हे मेहमान का नामकरण समारोह आयोजित करने का फैसला लिया गया। नाम रखने का अधिकार पिता का होता है, इसलिए दादाजी ने अरमान को बताया कि वो अपने बेटे के लिए एक अच्छा नाम चुने। दादाजी ने सभी लोगों को सफ़ेद कुर्ता धोती पहनने के लिए कहा। उन्होंने पिछली बार कुर्ता धोती सिर्फ मंदिर जाने के लिए पहनी थी, लेकिन आज सब एक बार फिर धोती कुर्ता पहनकर तैयार खड़े थे। सभी लड़के एक से बढ़कर एक डैशिंग और अलग पर्सनैलिटी में बहुत ही गुड लुकिंग नज़र आ रहे थे। खासकर उनकी पत्नियां अपना दिल हार रही थीं कि उनके पति एक से बढ़कर एक हैंडसम लग रहे थे। अरमान भी बुझे मन से तैयार हो रहा था। पिछली बार अरमान ने दादाजी की बात को मानने से इनकार कर दिया था और उसने धोती कुर्ता नहीं पहना था। वो उस वक्त अपने फॉर्मल बिजनेस सूट में ही मंदिर गया था, लेकिन आज दादाजी की बात मानने पर वो मजबूर हो गया, क्योंकि उसके पिता से लेकर दादाजी और घर के जितने भी जेंट्स थे उन सभी ने धोती कुर्ता पहना हुआ था। और आस्था ने प्यार से अरमान को धोती कुर्ता पहनने के लिए ही आग्रह किया। अरमान आस्था की खुशी के लिए वो पहनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वक्त वो अपनी धोती सही से पहन नहीं पा रहा था। बार बार उसकी धोती खुल रही थी। उसे काफी अजीब लग रहा था। किसी से मदद लेने के बारे में अरमान सिंघानिया सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी ईगो, उसका पावरफुल आउरा उसे इजाज़त नहीं देता था कि वो किसी से मदद मांगे। अरमान धोती बांधने के लिए इंटरनेट वीडियो का इस्तेमाल कर रहा था और इंटरनेट पर धोती कैसे बांधते हैं वो देख रहा था। आस्था चुपके से अरमान को बहुत देर से देख रही थी और मुँह छिपाकर चहकती हुई हंस रही थी। आस्था के साथ साथ रौनक, रश्मि, एंजल, राधिका भी काफ़ी देर से उसके साथ खड़ी थीं।
जो नामकरण की विधि के लिए आस्था को बुलाने आई थी, लेकिन अब सिर्फ अरमान के आने का इंतजार कर रही थी। जब अरमान नहीं आया तो पूरा परिवार एक एक करके अरमान के कमरे के बाहर जमा हो गया। आस्था को कमरे के अंदर झांकते हुए देखकर सभी लोग भी झांकने लगे। जैसे ही उन सबकी नज़र अरमान पर पड़ी, सबकी हंसी छूट गई, लेकिन कोई भी तेज आवाज से नहीं हंस रहा था, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो द ग्रेट अरमान सिंघानिया का उसके सामने मजाक उड़ा सके। दादाजी और अभिमान जी एक दूसरे की शक्ल गौर से देखने लगे, क्योंकि पूरे हॉल में नामकरण विधि के दौरान वे दोनों ही बैठे हुए थे और जिसे भी वे अरमान को बुलाने के लिए ऊपर भेज रहे थे वो वापस नहीं आ रहा था। इसलिए दोनों चिढ़कर सोचने लगे कि आखिर बच्चों को क्या हो गया है, जिसे भी ऊपर अरमान को बुलाने के लिए भेज रहे हैं वो वापस नहीं आता, वहीं ठहर जाता है। क्या उन लोगों को नहीं पता कि नामकरण की विधि शुरू होनी है? दादाजी गुस्से से भर उठे और अभिमान जी की ओर देखकर शांत स्वर में बोले, अभिमान चलकर तेरे बेटे को लेकर आते हैं, पता नहीं तैयार होने में उसे इतना वक्त क्यों लग रहा है, और ये सारे बच्चे कहाँ चले गए, वे भी वहीं ठहर गए हैं। दादाजी की बात सुनकर अभिमान जी भी मुस्कुराकर उठे। जैसे ही वे दोनों अरमान के कमरे के बाहर पहुंचे और उन्होंने लाइन से लगे हुए सब लोगों को फुसफुसाते हुए देखा तो हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। तब दादाजी थोड़ी धीमी लेकिन कड़क आवाज में बोले, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम लोगों को नहीं पता कि नामकरण की विधि के लिए देरी हो रही है? जैसे ही दादाजी वहाँ आए, सब लोगों ने चुपचाप सर झुकाकर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को धकेलकर शराफत से पीछे खड़े हो गए। लेकिन अब दादाजी और अभिमान जी दोनों अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही दादाजी और अभिमान जी दोनों ने अंदर झांक कर देखा कि अरमान किस तरह से धोती के साथ जूझ रहा है, तो दादाजी और अभिमान जी खुद को रोक नहीं पाए और खिलखिलाकर हंस पड़े। अब दादाजी को हंसते हुए देखकर बाकी सबकी भी हंसी छूट गई। अरमान के कानों में जैसे ही हंसी की तेज आवाज सुनाई दी तो वो थोड़ा झेंप गया और फटाक से बाहर की ओर देखने लगा, लेकिन अरमान को देखकर सबको सांप सूंघ गया और सब चुप हो गए। तभी मुस्कुराते हुए अभिमान जी अंदर आए और अंदर आकर उन्होंने अपने बेटे अरमान की ओर प्यार भरी नजरों से देखकर बोले, क्या हुआ बेटा, अगर तुमसे ये नहीं पहना जा रहा तुम अपने पिता को भी तो बुला सकते थे ना, मैं हूं ना, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। ये बोलकर अभिमान जी ने अरमान के सर पर प्यार से हाथ फेरा और जल्द ही अरमान को बड़े अच्छे तरह से धोती पहना दी।